ओम शांति। हमारे बीच में स्वामी भाई उपस्थित हैं। हम स्वामी भाई का भी दिल से बहुत बहुत वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्वामी भाई का बुके से, तिलक से स्वागत करेंगे और हम तालियों से स्वागत करेंगे। हम सभी स्वामी भाई को तो जानते ही हैं। स्वामी भाई लगभग 30 साल से भी अधिक बाबा के ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं और आप एक पॉपुलर इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप 7 डिग्री होल्डर भी हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अगर सुनाने जाऊँ तो बहुत समय भी कम पड़ेगा। आप बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर है प्रोफेशन से। आपने 100 से भी अधिक नेशनल कॉन्फ्रेंसेस आपने एड्रेसेस किए हैं। आप प्रोफेसर भी हैं, आप ट्रेनर भी हैं, आप खास IIT IIM के स्टूडेंट्स को ट्रेन भी करते हैं, आप PhD और रिसर्चर्स को भी गाइड करते हैं। हमारा जो चैनल है पीस ऑफ माइंड, उसके भी आप एक प्रमुख वक्ता हैं। तो स्वामी भाई का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और स्वामी भाई, ये समय बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, है ना? स्वामी भाई आपको सोने नहीं देंगे। अगर थोड़ी भी नींद आ रही होगी ना, तो आपको पूरी तरह से जगा देंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, रिटर्न जर्नी का GPS, इस विषय के ऊपर स्वामी भाई हमारे साथ शेयर करेंगे। ओवर टू स्वामी भाई।
ओम शांति। हार्टी वेलकम। आप सभी का बहुत दिल से स्वागत भी है और विशेष धन्यवाद भी है कि आप समय पर पहुंचे। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू रिस्पेक्ट टाइम, व्हेन टाइम कम्स टाइम वुड रिस्पेक्ट यू। जब हम समय का सम्मान करते हैं तो समय आने पर समय हमारा जरूर सम्मान करती है। खास करकर इस ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग ने जो बहुत सुंदर भट्टी का ऑर्गेनाइज किया है, रिटर्न जर्नी। इनफैक्ट संगम युग पर शिव बाबा इस धरती पर उतरते हैं तो हमको दो चीज सिखाते हैं। पहला आर्ट ऑफ लिविंग और दूसरा है आर्ट ऑफ लीविंग। एक है जीवन जीने की कला और दूसरा है जाने की कला। अब घर जाना है। और इस सुंदर भट्टी में हमारी आदरणीय दिव्या दीदी जी ने मुझे बहुत सुंदर टॉपिक दिया है, रिटर्न जर्नी का GPS। GPS का जो फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, यूज तो जरूर करते हैं भले उसका फुल फॉर्म ना भी जाने, इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS का फुल फॉर्म है। ये GPS एक इतनी सुंदर टेक्नोलॉजी है कि बहुत वर्षों से ये यूज हो रहा है। खास करकर जो एरोप्लेन में GPS यूज होता था, क्योंकि आसमान में एक जगह से दूसरे जगह जाना, कैसे जाएंगे, तो GPS यूज होता था। बस वर्तमान समय पर वो आसमान की जो टेक्नोलॉजी है वो धरती पर आ गई है और हम सबके हाथ में भी वो टेक्नोलॉजी है, और खास करके मोबाइल फोन्स। तो हम सभी के मोबाइल फोन में एक चिप होता है और उस चिप से वो सिग्नल भेजता रहता है। तो हमारा मोबाइल का जो सिग्नल है वो बेसिकली कैच करता है आसमान के ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। तो आसमान के ऊपर जो एटलीस्ट 3 सैटेलाइट हमारे उस मोबाइल के उस सिग्नल को कैच करती है, मिनिमम 3 सैटेलाइट, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये 3 सैटेलाइट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट को लोकेट करती है कि अभी वर्तमान समय पर आप धरती पर कहां हो। और अगर आप गाड़ी में बैठे हो, जैसे जैसे मूव कर रहे हो तो तीनों सैटेलाइट कुछ समय के बाद वो एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पर शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे अगर आप अभी मोबाइल को ऑन करें और उसका GPS लगाएं, उसका मैप्स को ऑन करें, तो GPS अपने आप लोकेट हो जाता है। अगर आपका GPS बंद है तो बोलेगा डू यू वॉन्ट टू ओपन इट। तो जैसे आज शाम को मुझे यहां से ट्रेन पकड़नी है अबू रोड रेलवे स्टेशन, तो मैं करंट लोकेशन पकड़ता हूं, तो करंट लोकेशन इज ज्ञान सरोवर हारमोनी हाउस। मुझे जाना कहां है, अबू रोड रेलवे स्टेशन। तो अबू रोड रेलवे स्टेशन में उन्होंने ऑलरेडी बहुत समय से वो लोकेट करके रखे, क्योंकि बहुत लोगों के मोबाइल वहां पर हुए हैं, तो लोकेटेड है ऑलरेडी। तो पूछता है फाइनल डेस्टिनेशन किधर है, तो वहां तक वो हमको बहुत क्लियरली बताता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, कितना समय लगेगा, ट्रैफिक है या नहीं। ये तो जीपीएस की टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम इस भट्टी में कोई गाड़ी या किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर आत्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न जर्नी तो आत्मा को करना है, हमें शरीर रूपी गाड़ी को तो लेकर नहीं जाएंगे। तो आत्मा अपना करंट लोकेशन को पकड़ना बहुत जरूरत है। तो आत्मा का जीपीएस कैसे काम करता है, हम सर्व आत्माओं का एक ऊर्जा है जिसको फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो शरीर छोड़ते वक्त आत्मा की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को लेकर आत्मा टेक ऑफ करती है और फिर वो परमधाम में उसकी ऊर्जा जाती है। परमधाम में जो हाईएस्ट ऊर्जा है शिव बाबा, और उसके नजदीक जो अष्ट रतन 108, 16108 और धीरे धीरे 35 करोड़ और सब नीचे। तो आत्मा की जितनी प्योर एनर्जी होगी, आत्मा सात गुणों की एनर्जी कितने वाइब्रेट करते हैं, उस ऊर्जा से वो टेक ऑफ करती है। मैं अंतिम जन्म की बात कर रहा हूं, एडवांस पार्टी से डिफरेंट केस, लेकिन जब स्वर्ग का गेट खुल जाएगा उस समय की मैं बात कर रहा हूं। तो फिर आत्मा वो एनर्जी को लेकर जाती है, जहां उसकी एनर्जी की कैपेसिटी होती है वहां वो परमधाम में आकर टिक जाती है, उससे आगे ऊपर नहीं जा सकती है। प्लेन को भी अगर टेक ऑफ करना होता तो हर प्लेन की एक कैपेसिटी होती है। 20 सीटर की जो प्लेन होती है, हेलीकॉप्टर जो होती है, हमारे फाइटर जेट की जो होती है, तो सबकी अपनी अपनी हाइट होती है, क्योंकि उतना उसका इंजन में पावर होना चाहिए। आप हेलीकॉप्टर को उठाकर आप 40,000 फुट पर नहीं लेके जा सकते हो, उसकी ये वो कैपेसिटी नहीं है, वो चाहेगा तो क्रैश हो जाएगा वो। तो स्थूल चीज में जो होता है वो सूक्ष्म में भी होता है। तो आत्मा परमधाम में जाकर एक जगह रुक जाती है, राइट, उसकी वो कैपेसिटी है। अब जब धरती सतयुग की जो सुंदर एनर्जी जब बनती है, तो जो जो बाबा के साथ हाई एनर्जी है, यहां सतयुग की भी वही एनर्जी, तो अपने आप वो आत्मा जो है सतयुग में पहुंचती है। जो आत्मा ने 50% पुरुषार्थ किया, त्रेता युग की जो एनर्जी है, वो जब त्रेता युग की जो सारा खेल ऑटो मोड पर, वो अपने आप ऊर्जा का सारा खेल चलता रहता है। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो इस भट्टी में हम जो जितने भी क्लासेस हो रहे थे, उस क्लासेस का मेन लक्ष्य जो मैंने जो समझा है कि करंट स्थिति को ठीक करना बहुत जरूरत है। अब नई दुनिया कब आएगी, स्वर्ग का गेट कब खुलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन आत्मा तो कभी भी शरीर छोड़ सकती है, क्योंकि जैसे बताया गया हम सबके पास रिटर्न टिकट तो है ही। इसे करंट स्थिति को ठीक करना बहुत बहुत जरूरत है। और इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अगर शरीर भी छूट जाए तो खुशी नहीं जानी चाहिए। इसलिए बाबा बीच बीच में पूछते हैं, खुश हो, हर्षित रहते हो, फिर बाबा बहुत मुस्कुराते। अब एक बार पूछे, सदा खुश हो, ये सदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने समय का अभ्यास होता है वो धीरे 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 वो एनर्जी बनने लगती है। इसे इंटरनेशनल योगा डे में मुझसे पूछा कि व्हाट इज राजयोगा, तो मैंने कहा राजयोगा जो हमको है, जो परमात्मा आकर सिखाते हैं, इट इज नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग डेथ ऑल्सो विथ हैप्पीनेस। मृत्यु हमारा उत्सव होना चाहिए। सतयुग में जब जन्म लेते हैं तो बैंड बाजा बजता है, क्योंकि राजकुमार ने जन्म लिया। और सतयुग में बाबा ने हमको बताया है कि जब जाने का टाइम होता है तो सबको बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए टाटा बाई बाई करते हैं, वहां पर भी बैंड बाजा बजता है। तो जो संस्कार हमको सतयुग में चाहिए, वो संस्कार अभी हमको संगम युग में उसकी कल्पना करनी है और उस पर काम करना है कि मेरा अंतिम क्षण भी उत्सव जैसे होना चाहिए। अभी बीच में एक न्यूज बहुत फेमस हुआ था कि दो दोस्त आपस में थे, तो वह हमेशा बात करते थे और वही डिस्कस करते थे कि भाई अंतिम समय बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि मुक्ति मोक्ष मिलता है। तो उसने कहा जितना हम खुशी से जाएंगे, तो भक्ति मार्ग में भी ये गायन है, कोई नई बात नहीं है ये। तो उन्होंने आपस में बात किया, तो बात करते करते उसने कहा कि एक ने कहा कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा अगर तेरे से पहले मेरा पासपोर्ट वीजा कंफर्म हो जाता है तो तू बैंड बाजा लेकर आना। तो उसने कहा हाँ जी जरूर लेकर आएंगे। कुछ समय के बाद ये व्यक्ति को थोड़ा सा बीमार बीमार हो गया, तो उसको लगा मेरे को जाने का टाइम है, या पता नहीं मैं कब जाऊंगा, शायद ठीक भी हो जाऊंगा या कब जाऊंगा। तो उसको लगा कि जो मेरा संकल्प है उसको पूरा होना चाहिए। उसने अपने दोस्त को पत्र लिखा कि हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, तो प्लीज अब मुझको लगता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है या खराब है जो भी है, लेकिन जब मैं शरीर छोड़ूंगा ना तो प्लीज तुम बैंड बाजा लेकर बजाना। लेकिन वो ठीक हो गए, पत्र उसके पास गया, तो आकर देखे तो कुछ समय के डॉक्टर्स ने कहा नो इज ओके। अच्छा 10-15 साल के बाद फिर उसने शरीर छोड़ा। अब जैसे ही शरीर छोड़ा तो इसको दोस्त को याद आया, अरे उसने कहा था, तो उसने लेटर ढूंढा और लेटर में लिखा था कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो बैंड बाजा लेकर आना। तो दोस्त क्या किया, उसके फ्यूनरल में बैंड बाजा लेकर पहुंच गया। और परिवार वालों का, तो परिवार वाले जानते भी थे ये तो इनका दोस्त है, बाबूजी के दोस्त हैं, तो पूछा कि बैंड बाजा कैसे। तो उसने पत्र दिखाया कि देखो आपके बापूजी ने मेरे को पत्र लिखा है, उसकी अंतिम इच्छा है कि जब यात्रा पे जाएगा तो बैंड बाजा बजना चाहिए। अब बाबूजी की अंतिम यात्रा है तो वो सीन बहुत वायरल हुआ था कि वो शव यात्रा हो रहा है और ये दोस्त बस नाच रहे हैं, नाचने की कोशिश कर रहे हैं और बैंड बाजा बज रहा है, राइट। ऐसे मैंने देखा कुछ, एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ मैं ट्रैवल कर रहा था तो वहां के बहनें कह रहे थे हमारे यहां ट्राइबल कल्चर है ये कि जब किसी का शरीर छोड़, ट्राइबल आदिवासी, हम भी अनादि आदिवासी तो हैं आत्मा, तो उनका वो कल्चर है, वो बैंड बाजा आज भी बजाते हुए जाते हैं। देखो कितनी सुंदर यादगार है। आपने भी सुना होगा, जैसे कुछ भाई बहनों का मैंने सुना, उनके दादा नाना कहते थे सबसे कि मैं इस दिन शरीर छोड़ने वाला हूं। और कुछ जगह तो मैंने ऐसे सुना है, भाई बहनों ने कहा है कि वो दादा सब जगह घूम के आते थे, अब मैं इस दिन जाने वाला हूं, इसलिए सबसे मिलने वाला हूं, आप लोग आ जाना, घर पे बुलाते थे। और ऐसा जब बोले तो विश्वास नहीं होता, आज के समय पे भी हो रहा है। तो सब लोग आ रहे, तो बहू बहू से पूछे भोजन भोजन बन गया, सब लोग खा लो अभी मेरे को जाने का टाइम हो रहा है। और वो टाइम पर वो शरीर छोड़ते थे। कभी कभी ये अल्पकल्पनीय लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे यज्ञ में एक उदाहरण है और वो उदाहरण है दादी पुष्पा शांता का। मुंबई में कोलाबा में रहती है, 1983 की बात है, 7 फरवरी। किसी ने मुझे ये बताया तो मैंने कहा मैं चलो सत्य हो सकता है लेकिन आज के जमाने में इसको वेरीफाई करना बहुत जरूरत है, नहीं तो फिर लगेगा कि भाई स्वामी भाई ने कुछ सुना कुछ बता दिया। और थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हम सब चीज वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दादियों की कहानी है, तो मैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ढूंढ रहा था और बहुत आराम से मिल गया मुझे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस तरह से काम करता है, अगर आपने लिखा दादी पुष्पा शांता लास्ट डेज, बस AI में आपको टाइप करना है, तो वो क्या करता है जितना भी, और लिखना ब्रह्मा कुमारी लिख देंगे तो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट पकड़ता है, तो जितने भी ब्रह्मा कुमारी इसमें दादी पुष्पा शांता के बारे में जितना भी डाटा हमारे लिटरेचर में है और वो सर्वर में कहीं ना कहीं है, वो उसको ढूंढता है, कितना फास्ट वो ढूंढता है और आपको 2 मिनट में AI कर देगा। अभी कोई नहीं ढूंढिएगा, प्रोग्राम के बाद देखना, नहीं तो कहेंगे स्वामी भाई है ना अगर सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, राइट, क्योंकि मैंने सोचा आपको मैं रियलिटी बताऊं, तो मैं वैसे का वैसे ही पढ़ रहा हूं और इसका रेफरेंस मैं बता रहा हूं, इट इज www.brahmakumaris.com। तो नीचे बताता है कहां से मैंने ये रेफरेंस लिया हुआ है, उसका सोर्स भी बताता है। दादी जी लास्ट डेज, तो दादी पुष्पा शांता जी को हॉस्पिटलाइज किया गया, कोलाबा में रहती थी दादी जी। इन आर फाइनल डेज दादी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ड्यू टू चेस्ट पेन, उनको थोड़ा सा सीने में दर्द हो रहा था, वो एडमिट होना नहीं चाहते थे और कही कि नहीं मुझे लास्ट समय मुझे सेंटर पर भी बताना है, लेकिन डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि उनको किसी भी हालत में उनको हॉस्पिटल में एडमिशन करना है। 7 फरवरी 1983 का सुबह का दृश्य बताता है, आफ्टर फ्रेशनिंग अप एंड लिसनिंग टू द मुरली / गॉडली वर्शंस, मुरली सुनने के बाद उन्होंने सिस्टर मोहिनी को बुलाया और उनसे पूछा वक्त कितना हो रहा है, तो सिस्टर मोहिनी ने जवाब दिया 7:45 सुबह का टाइम। नेक्स्ट, दादी देन सेंट सिस्टर मोहिनी टू डू स्पिरिचुअल सर्विस टू ऑल द डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, तो दादी जी ने मोहिनी बहन जी को बोला सारे हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर्स हैं उनके नर्सेस की सेवा करो। क्या सेवा करना है, बोला उनको कहो कि दादी जी 8:30 शरीर छोड़ने वाले हैं। दादी विल लीव हर ओल्ड बॉडी एट 8:30 AM, यह समाचार सुनाना है। एट 8:25 AM विद सिस्टर मोहिनी एंड ऑल द डॉक्टर्स प्रेजेंट, दादी पुष्पा शांता लेफ्ट हर मॉर्टल कॉयल टू द ट्यून ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक इन रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। यह हमारी यज्ञ की कहानी है 1983, जहां पर, और फिर नीचे लिखते हैं इतना स्पेशल क्यों है। डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ वर सरप्राइज्ड टू सी अ पर्सन रिनाउंस देयर बॉडी विद सच अवेयरनेस, इतनी जागृत अवस्था में पहले से एग्जैक्ट टाइम पता चल गया कि मैं इस समय शरीर छोड़ने वाली हूं। द ब्रह्मा कुमारी साइट इज इट एज अ लिविंग एग्जाम्पल, इच्छा मृत्यु वरदान, डेथ बाई विश, और हाउ अ राजयोगी सोल लीव्स द बॉडी थ्रू विल पावर। ड्रामा में अगर नूंद है कि स्वामी भाई इस समय शरीर छोड़ना चाहिए, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि मुझे पहले से पता चल जाना चाहिए कि मैं इस वक्त शरीर छोड़ूंगा। और इसमें लिखा है दादी दिस एग्जाम्पल इज कंपेयर टू भीष्म पितामह फ्रॉम द महाभारत। ये लिखत में मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी या सुनी हुई कहानी नहीं बता रहा हूं। और इसके लिए सिग्नल इतना डीप प्योर वो कनेक्शन बाबा के साथ कि उनको पता चल गया मुझे कब शरीर छोड़ना है। कितनी वंडरफुल बात है। इसलिए ये जो योग भट्टी, योग मींस जुड़ाव, योग मींस कनेक्शन, और हम बाबा के साथ, हमारा सैटेलाइट कौन है? हमारे सैटेलाइट तो शिव बाबा है, सुप्रीम टावर। तो एक हुनर की जरूरत है हमको, और वो है एकाग्रता की शक्ति। योग हम कर तो रहे हैं, कितना समय हम योग कर रहे हैं क्वांटिटी इज नेवर इंपॉर्टेंट, इट इज द क्वालिटी ऑफ टाइम। और एकाग्रता क्या है हम सभी को पता है, राइट? एक मिनट, सभी सीधे बैठे, सभी मेरे साथ बोलिए, जब मेरा मन, तो जोर से बोलिए ताकि जो नींद कर रहे हैं वो एकदम जागृत हो जाए। वैसे सभी जागृत है। जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है और वहां टिकती है जहां मैं आत्मा चाहूं, उसको एकाग्रता कहते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, योग को बाबा सहज में करते हैं, याद की एक यात्रा है, इट्स अ जर्नी। जैसे हमारी बहनें, हमारे भाई लोग हमको योग कराते हैं, तो जब वो योग के लिए बैठते हैं तो वो अपनी एक यात्रा को फिक्स करते हैं। जैसे कल नुमा शाम में हमें हरीश भाई जी, उनको पता था कौन से समय के कौन सा गीत बजाऊंगा, कौन सा करूंगा, कब होम की ध्वनि करना है। उन्होंने अपना जीपीएस सेट किया था और उन्होंने जीपीएस सेट कर दिया था, वो गाड़ी को ड्राइव करते हैं, हम बड़े आराम से मुस्कुराते हैं, चलिए भाई साहब चलिए चलिए, हम उसके पीछे यात्रा कर रहे थे। तो उन्होंने जीपीएस सेट किया कि मुझे एक घंटा सेशन लेना, एक घंटे में कौन सा गीत बजेगा, कब कमेंट्री करूंगा, कब मैं होम की ध्वनि करूंगा, उनका जीपीएस था। हम जब बैठे तो हमारी याद की यात्रा फिक्स होनी चाहिए। अब मैं यहां से अगर अबू रोड जाऊंगा तो बहुत क्लियरली होना चाहिए, यहां से मैं ज्ञान सरोवर का मैं गेट क्रॉस करूंगा, उसके बाद नीचे फिर इस पड़ाव वड़ाव, फिर मैं शांतिवन के गेट से एंट्री करूंगा, फिर मैं थोड़ा देर है ना बाबा के कमरे में जाऊंगा, फिर मैं है ना अबू रोड रेलवे स्टेशन, तो क्लियर है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि नीचे उतरे फिर इधर गए फिर उधर गए फिर उधर गए फिर उधर गए, तो मेरी तो ट्रेन छूट जाएगी ना। आधा घंटा बैठ रहे, 15 मिनट बैठ रहे, 10 मिनट बैठ रहे, बैठने के पहले आत्मा रूपी राजा अपना जीपीएस सेट करना चाहिए, कभी स्वमान कभी रू रिहान कभी ये कभी वो। आप सारे फ्लेवर्स को यूज करो, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है। अगर आप कहेंगे स्वामी भाई मुझे सिर्फ मैं और मेरे बाबा बिंदु स्वरूप, परफेक्टली ओके, एक सेकेंड में आप पहुंच जाइए वहां पर, टिके रहिएगा। कितना समय हम टिक सकते, एक सेकंड मन बुद्धि नहीं जाना चाहिए। तो हमारी एकाग्रता जो है वो सिग्नल बनाती है। और इसमें एक बहुत सुंदर क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे आदरणीय दादी जानकी जी का। दादी जानकी जी जो है हमारे लिए सबके लिए एक उदाहरण मूर्त है, और वो मोस्ट स्टेबल माइंड इसलिए बने क्योंकि वो एकाग्रता पर प्रैक्टिस करते थे। वैसे बहुत दादियां, सभी दादियां करती, लेकिन हमारे सामने जो उदाहरण है, कैसे उदाहरण बनता है, आप में से पुराने भाई बहनों ने भट्टी में कहीं ना कहीं उदाहरण सुना होगा। ये उस समय की बात है जब डॉक्टर आर वेंकटरमन देश के उपराष्ट्रपति थे, तो दिल्ली में बहनें उनसे मिलते थे और मधुबन में आने का निमंत्रण देते थे। तो वेंकटरमन जी की बड़ी इच्छा भी थी कि मैं पांडव भवन में जरूर आऊं, मधुबन में आऊं। उस समय से पांडव भवन होता था। फाइनली वो प्रोग्राम बना तो पांडव भवन में दादी प्रकाशमणि जी ने सबके सामने रखा कि खुशखबरी है कि डॉक्टर आर वेंकटरमन, उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने, कि उनका प्रोग्राम बन गया है, वो आ रहे हैं। क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर उनका प्रोग्राम बनाती है। तो मिनट टू मिनट शेड्यूल होता है, जो राष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री होते, उपराष्ट्रपति होते, कौन से क्षण निकलेंगे, मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है। स्टेज पर भी मिनट टू मिनट प्रोग्राम, उनका बहुत क्लैरिटी होती है उस मामले पर, खास करके जब वो एक ऑफिशियल फंक्शन करते हैं। तो उनका वो प्रोग्राम था, उनका जीपीएस कैसा था, वो दिल्ली से निकलेंगे और हेलीकॉप्टर उनकी पोलो ग्राउंड में उतरेगी माउंट आबू, वहां से वो सर्किट हाउस में जाएंगे, नाश्ता करेंगे, दो तीन ऑफिशियल प्रोग्राम है, दिलवारा मंदिर जाएंगे, जाते वक्त वो मधु पांडव भवन होते हुए जाएंगे। तो दादी जी ने कहा, हमारी बहुत इच्छा थी कि वो ज्यादा समय बिताएं, लेकिन उन्होंने जो टाइम दिया है वो 10-12 मिनट का टाइम दिया, और मैक्सिमम 12-13 मिनट का, उससे ज्यादा उन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर हमने बात किया तो बोले ठीक है 12 से 15 मिनट तक वो बिता सकते हैं। उस समय बाबा की सीजन भी चल रहा था, और दूसरा दिन जब वेंकटरमन जी को निकलना था, तो दादी जानकी जी उस समय उस सीजन में थे। तो बताते हैं कि दादी जानकी जी बाबा के कमरे में गए, इतने एकाग्र हुए, और उन्होंने एकाग्रता कैसे किया, आत्मा और शिव बाबा के बीच में ऐसा याद किया कि शिव बाबा और दादी जी के बीच में उन्होंने एक सुरंग बनाया, प्रकाश में टनल चैनल बांध दिया, और जितना समय उन्होंने ये योग किया, एक सेकंड मन बुद्धि उस चैनल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं मेरे बाबा, मैं मेरे बाबा, मैं मेरे बाबा, और पूरा योग में दादी जी मन बुद्धि से वो प्रकाश में वो टनल का निर्माण कर रहे थे। अमृत वेला जैसे ही खत्म हुआ तो दादी जी ने क्या किया, अपने सिर से वो टनल निकाल दिया और उठाकर दिल्ली में डॉक्टर आर वेंकटरमन के सिर पर रख दिया, और फिर वेंकटरमन को संकल्प दिया, जैसे बाबा और हम कहेंगे ना वैसे ही आप यहां से आएंगे, राइट। अब जैसे ही वेंकटरमन जी वहां से निकले, वो चैनल में आ गए, अब उनका अपना मन बुद्धि काम नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसे ही वो पोलो ग्राउंड में उतरे, तो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, तो दो ग्रुप था, एक ग्रुप उनका गवर्नमेंट ऑफिशियल से, एक जगह दादी जानकी जी, और वो उतरते ही साथ उनकी नजर दादी जी पर पड़ी, वो थोड़ा चले, दादी जी भी आए और दादी जी ने बड़े प्यार से स्वागत किया और कहा, हम सबका आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे दादी जी, इसलिए तो हम आए हैं। और इमीडिएटली अपने पीए को बुलाता है, पहले हम पांडव भवन जाएंगे, मधुबन जाएंगे फिर। और पीए बोलने की कोशिश करे, भाई सर सर सर, आपको सर्किट हाउस में नाश्ता कुछ सुनी नहीं रहे। अरे भाई चलो ना, जैसे चलो। और फिर दादी ने अनाउंसमेंट किया दादी प्रकाशमणि जी को कि वेंकटरमन जी पहले मधुबन में आ रहे हैं। तो फटाफट उन्होंने स्वागत वागत किया, उतरे वो पांडव भवन के आंगन में, उतरकर स्वागत, दादी जी ने स्वागत किया। सबसे पहले उनको बाबा के कमरे में पहुंचाए, बाबा के कमरे में आराम से बाबा को देखा। कौन कौन बाबा के कमरे में पहुंचे, मुस्कुराते हुए हाथ उठाओ, पहुंच गए आप लोग, अब स्थूल में भी थोड़ी देर के बाद आप जाएंगे। ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, चार धाम की यात्रा। फिर बाबा के कुटिया में लेकर गए, फिर शांति स्तंभ, फिर हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में दादी जी एक एक चित्र समझा रहे, तो दादी जी ने देखा कि वेंकटरमन जी की कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनो, अच्छा दादी ऐसा था ऐसा था। फिर दादी जी ने धीरे से पूछा, भाई साहब पहली बार बाबा के घर में आए हो तो नाश्ता करेंगे ना। अरे दादी जी, इसलिए तो हम आए हैं। दादी बनाओ, नाश्ता बनाओ भाई, नाश्ता बनाओ। फिर एक दो चित्र के बाद फिर दादी ने पूछा, भाई साहब बाबा के घर में आए हो तो बच्चों से मिलेंगे ना। अरे दादी, इसलिए तो हम आए हैं आपके पास, कोई जल्दी नहीं, आराम से नाश्ता किया। दादी जी ने सबको कहा, मेडिटेशन हॉल में बैठो, क्योंकि कोई प्रोग्राम तो था नहीं, 12-15 मिनट में क्या करेंगे। आए आराम से बैठे और फिर वो निकले। तो 2-3 दिन के बाद जब बाबा की पधरामणी हुई, तो फिर जब खत्म होने के बाद फिर दादियां हमारे बाबा से मिलने जाते, तो समाचार सुनाया, बाबा 2-3 दिन पहले राइट वेंकटरमन जी आए थे, और थैंक्स बाबा, आपने इतना कमाल कर दिया, 12-15 मिनट वो 2-2.5 घंटा रहे, तो बाप दादा ने कहा ये योग का कमाल है, और योग किया जानकी बच्ची ने। तो दादी जी ने अनाउंसमेंट किया, कल मुरली क्लास के बाद दादी जानकी जी अनुभव सुनाएंगे कि आपने कैसे किया। तो दूसरा दिन दादी जी ने वो अनुभव बताया, इतनी एकाग्रता कि मैं और मेरे बाबा वो चैनल बांधा, प्रकाशमय टनल। दादी तो दादी थी, वो इतने शक्तिशाली थे कि वो डॉक्टर वेंकट रमन जी के मन बुद्धि को उन्होंने उस चैनल पर ले आए। चलो हम बाद में दादी जैसे बनेंगे, पहले एटलीस्ट मैं 10 मिनट योग कर रहा हूं तो 10 मिनट तो मेरा मन बुद्धि उसमें होना चाहिए ना। और ऐसा वो प्रकाशमय चैनल बांधना, राइट? आज आप बाबा के पास जा रहे हो ना, मधुबन में जा रहे हो, जहां आप बैठेंगे, राइट? आपको जो रू रिहान करना है, लव लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, जो करना है करिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं 5 मिनट जो बैठेंगे एक जगह आप डिसाइड करना कि मैं और मेरे बाबा ऐसा प्रकाशमय चैनल बांधना। और फिर उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। क्या करना? धीरे से आप भी 2-3 दिन के बाद अपने अपने स्थान पर जाएंगे। आप यहां बैठकर जैसे दादी जी ने डॉक्टर आर वेंकट रमन के लिए चैनल बांधा, वैसे आप अपने लिए भी लौकिक घर तक पहुंचने तक या सेंटर पहुंचने तक वो हॉरिजॉन्टल चैनल बांध के रखना। दिस इज द जीपीएस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ी हमारे लिए सब्जेक्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इसलिए जितना आप प्रकाशमय चैनल वो घर अपने लौकिक घर या सेंटर तक बांध के रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। हम लोग इतने श्रेष्ठ दिव्य संस्कार हैं कि जब भी हम घर से निकलते हैं तो हम बाबा से बोल कर जाते हैं, बाबा हम जा रहे हैं, अब उसे आगे बढ़ना है, जीपीएस सेट करना है, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। ड्रामा में अगर मेरा भी नूंद होगा जाने का तो आजकल में हम भी चले जाएंगे, लेकिन जब ये चैनल बांधते हो तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस ऊर्जा से शरीर छोड़ती है, दैट एनर्जी, तो बाबा की याद से शरीर छोड़ते हैं। अंत मति सो गति, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा ध्यान रखना। और ये प्रकाशमय चैनल तभी बंध सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, जो ये 2-3 दिन के भट्टी में सभी भाई बहन हमको समझा रहे हैं कि प्योर एनर्जी बिंदी लगा दो। मैं कुछ समय पहले इंडिया टुडे पढ़ रहा था, तो इंडिया टुडे में मैंने एक संदर्भ पढ़ा कि भक्ति मार्ग में बहुत लोगों की इच्छा होती है कि मैं मुक्ति या मोक्ष पाऊं। तो भारत में एक बहुत सुंदर जगह है बनारस काशी में, वहां जाकर अगर शरीर छोड़ेंगे तो मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। तो वहां पर एक आश्रम है, बहुत सारे वैसे आश्रम है, लेकिन उस आश्रम का जिक्र उस इंडिया टुडे में था कि जब वहां पर कोई व्यक्ति जाता था तो बड़े प्यार से वहां आश्रम के लोग उनसे मिलते थे, और उनका अंडरस्टैंडिंग ये था कि अगर किसी ने बहुत विकर्म किया तो उसको जब फांसी की सजा सुनाते हैं तो अंतिम इच्छा उनसे पूछी जाती है, और अगर हो सके तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी भी करते। तो ये आश्रम के लोग महसूस करते हैं कि ये तो भक्ति मार्ग वाले लोग हैं, इन्होंने कोई विकर्म तो नहीं किया, एक श्रेष्ठ भावना है भाई, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, कितना भावना से आते, तो बड़े प्यार से उनका ध्यान रखते। अब हुआ क्या, वो इतना प्यार मोहब्बत से उनसे मिलते थे कि वो बात फैलने लगी और बहुत लोग उस आश्रम में आने लगे मुक्ति और मोक्ष के लिए। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कमरे लिमिटेड थे और बहुत सारे लोग आ रहे थे, अब किसी को ना भी नहीं बोल सकते भाई सब अंतिम इच्छा। तो उन्होंने एक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाया इस सिचुएशन को डील करने के लिए, क्या आप सभी का हार्दिक स्वागत है, यहां पर आकर आप अपना मुक्ति और मोक्ष के लिए जाइएगा, लेकिन एक कंडीशन है कि जिस दिन आप इस आश्रम में आए एक हफ्ते के अंदर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, एक हफ्ते के अंदर अगर ऊपर नहीं गए तो आप घर वापस जाइए। अब लास्ट स्टेज वाला बंदा वहां जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं कुछ घंटों के मेहमान है, बहुत वृद्ध बीमार, वही लोग जाते हैं। अब गए वहां पर, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो रहा, भाई साहब जा ही नहीं रहे, तो बीपी भी बढ़ता है, प्राणायाम भी होता है, बाप रे 2-3 दिन बाकी है, अगर ऊपर नहीं गए तो फिर घर जाना पड़ेगा, घर वाले भी परेशान, हम भी परेशान। तो 4th-5th दिन पता है वहां के लोग आकर नजदीक बैठते, बड़े प्यार से पूछे, क्या हुआ बाबूजी, ऊपर नहीं जा रहे? कहते हो डॉक्टर्स ने तो कहा था 2-3 दिन के अंदर ऊपर चले जाएंगे, अभी हो गया, जा नहीं रहे, वो तो कुछ घंटे की भी बात कर रहे थे। बोले हम आपकी मदद करें? बोले मदद करिए। पता है कैसे मदद करते, इट्स सो इंटरेस्टिंग। वो नजदीक बैठते और धीरे से पूछते, बाबूजी इस जन्म में किसी ने आपको दुख दिया है क्या? बोला हाँ जी बहुत लोगों ने दुख दिया है। तो बोले काम करिए भाई, यात्रा पर निकलिए आप, शरीर से तो आप यात्रा नहीं कर सकते, मन बुद्धि से यात्रा पर जाइए, उनके पास जाइए और उनको माफ करिएगा, माफ करो। फिर धीरे से पूछते हैं, बाबूजी बहुत लोगों ने तो दुख दिया ये तो पता चला, इस जन्म में आपने कितनों को दुख दिया? तो बाबूजी कहते वो भी लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो कहते यार पहली यात्रा खत्म करने के बाद दूसरी यात्रा करना, ठीक है उन लोगों के पास जाइए जिनको आपने दुख दिया है और आज उनसे माफी मांग लीजिए, फॉरगिव एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। और जैसे हमारी बहनें यात्रा कराते ना मन बुद्धि से, वैसे वो भी यात्रा कराते बड़े प्यार से आंखें बंद करके मन बुद्धि से, और बाबूजी कब सो जाते पता ही नहीं चलता है। दूसरा दिन वह आश्रम का व्यक्ति उठाता है तो आत्मा गई, गई। पकड़ के नहीं रखिए, राइट? दोनों हाथ ऐसे रखें, हाथ फिर से दोनों हाथ जोड़े, हाँ बस 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 वाइब्रेशन काफी हो गए। धीरे से मुस्कुराते हुए दूसरों का चेहरे अपना चेहरा दिखाइए और पूछिए, देखो मेरा चेहरा कैसा है, सुंदर हर्षित। और फिर आजू बाजू बड़े प्यार से बोलिए, भाई कुछ गलती वलती हो गया, ऊपर नीचे हो गया, माफ करो। क्योंकि ये जो ब्राह्मण जीवन है ना, 84 जन्म वो हमारे पीछे चलेंगे, इसलिए प्लीज बीकेस के साथ तो कभी कॉन्फ्लिक्ट में जाना ही नहीं चाहिए, प्लीज। वैसे देखा जाए तो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, लेकिन बीकेस और बीकेस के साथ हमारा सबसे बड़ा इश्यू, इतना ज्ञानी तो आत्मा है, हर दिन स्टेज पर लेक्चर लेता रहता है, और संस्कार ऐसे, इट्स ओके, सब नंबर वार है, सबका अपना अपना पार्ट है ना। फॉरगिव एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्योंकि जैसे ही आपने किसी के बारे में पकड़ के रखा, इट्स अ नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी। और जितना हम बाबा को याद करते रहेंगे और बाबा के साथ वो सर्व संबंध जोड़ के अपने दुख दर्द को रखिएगा, हल्के हो जाइए, लाइट हो जाइए, लिव लाइफ लाइट इजी, माफ करो माफ करो, बाबा से एक एक संबंध जोड़ो। और फिर आप देखेंगे ऐसा समय आएगा कि वो आत्मा, भले ज्ञानी तू आत्मा, वह सीनियर आत्मा, जूनियर आत्मा, जो भी हो, आप देखेंगे आपको भले ओम शांति बोलने का मन नहीं कर रहा है, वो भी ओम शांति नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि हमारी एनर्जी उस आत्मा के प्रति बड़ी शुभ भावना वाली है, मतलब धीरे 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 वो दर्द जो है मर्ज हो गया। तो हमारा जीपीएस कैसा होना चाहिए, हमारा जीपीएस ऐसा होना चाहिए, ये बार बार योग में सेट करना, आत्मा की हाई प्योर पॉजिटिव एनर्जी, फिर धीरे से आत्मा परमधाम जा रही है, फिर धीरे से अभी लौकिक घर और सेंटर छोड़िए, आगे का आप जीपीएस करिए, आगे कहां जाएंगे, हमारा लक्ष्य कहां पर है, ऑब्जेक्टिव सतयुग में, सतयुग राज्य महल। कौन कौन सतयुग में श्री कृष्ण के नजदीक आना चाहते, मुस्कुराते हुए हाथ उठाए, वाह बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो, जीपीएस सेट करना जरूरत है ना, राइट? तो आज भी बाबा ने विश्व महाराजन विश्व महारानी की बात कही, तो हम लोग राज्य महल की बात करते हैं, लेकिन उस राज्य महल में आने के पहले हमारा जीपीएस एक और महल में जाना चाहिए। डायरेक्टली राज्य महल पर हम डाउनलोड नहीं होने वाले, एक और महल में आना पड़ेगा, और वो महल है गर्भ महल, इट्स गर्भ महल। और कहीं ना कहीं ये गर्भ महल हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, हम सीधे राज्य महल करते रहते हैं, लेकिन राज्य महल डायरेक्टली हम जा ही नहीं सकते, गर्भ महल में जाना पड़ेगा। इस रिटर्न जर्नी में उस गर्भ महल का निर्माण करना, ये भी हम बीकेस की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और कहीं ना कहीं ड्रामा में ऐसा नूंद होता है, हर एक आत्मा जो है ना, हर आत्मा के ऊपर वो सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट काम करती है, यहां जो भी बाबा के बच्चे, भले आप कोई भी सेवा करें, जरूरी है भाषण करना या सेंटर इंचार्ज भरना, भले हम सिंपल सा सेवा, भोजन बनाना, बर्तन मांजने की भी भले हम सेवा करें, झाड़ू पोछा लगा रहे, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ अ सेवा वी आर डूइंग, व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज किस ऊर्जा के साथ हम झाड़ू पोछा बर्तन मांज रहे।
राइट, और हमेशा हमारा वो तीन सैटेलाइट के साथ वो कनेक्शन रहता है। एक है शिव बाबा, दूसरा है ब्रह्मा बाबा और तीसरा है एडवांस पार्टी। आज जितनी भी सेवाएं संगम युग पर चल रही है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा तो पहले से थे, लेकिन एक जो बहुत बड़ा जो टीम तैयार हुई है, दैट इज एडवांस पार्टी। हम राष्ट्रपति भवन में गए थे, राष्ट्रपति ने फोटो खींचा, सेल्फी खींचा, सब जगह भेज रहे हैं। भेजिएगा फोटो, भेजिएगा राष्ट्रपति भवन का फोटो, सबको भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन वो हमको लगता हम बहुत बड़ा कार्य करें, ये एक्चुअली एडवांस पार्टी की एक बहुत बड़ी सेवा चल रही है गुप्त रीति से। तो हम कितना नम्रचित रहे भाई, इसे हर आत्मा के पीछे वो तीन सैटेलाइट आपको वो कार्य करा रही जिससे हम संपन्न और संपूर्ण बने। और कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी इस यात्रा की बात करूं तो थोड़ा सा मैं अपना अनुभव जरूर सुनाना चाहूंगा, और खास करके गर्भ महल को लेकर जो यात्रा है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य भी होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा, हमारे ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में मेडिकल विंग की तरफ से करीब 18 वर्षों से गुप्त रीति से इस गर्भ महल पर स्टडी और रिसर्च हो रहा है। अब क्योंकि अभी हम थर्ड फेज पर पहुंच गए हैं, तो अब टाइम आ गया, हमको लगता है कि अभी हमें बीकेएस तक ये जीपीएस बताना बहुत जरूरी है। और तीनों फेज श्रीमत अनुसार चला, बस पहला और दूसरा फेज काफी गुप्त रहा, क्योंकि नेचुरली कहीं ना कहीं हम भी समझ रहे थे। और इसकी यात्रा में स्वामी भाई कैसे आ गए, सन 2006 में मैंने अपनी लौकिक मामा को, मेरी लौकिक मामा ने शरीर छोड़ा, और 2007 में हमारी दादी प्रकाशमणि जी ने शरीर छोड़ा। दोनों मेरे लिए बहुत प्रिय थे, लौकिक मामा और दादी जी। अब जब शरीर छोड़ा, क्योंकि ज्ञान था तो हम लोग क्या करते हैं, तो मैं छोटे छोटे बच्चों को जब भी मिलता हूं तो मैं उनसे उनकी मम्मी से पूछता हूं कितने साल के हैं ये, और मैं ढूंढता हूं ये मम्मा होगी या दादी होगी, मम्मा होगी या दादी होगी। और धीरे धीरे मुझे बच्चों से बड़ा प्यार होने लगा, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्कूल में जाकर छोटे छोटे बच्चों को क्लास कराऊं। और उस समय मैं नवी मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था, तो मैं छोटे छोटे बच्चों के क्लासरूम में स्कूल में जाता था, और मैं कहता था मैं इनको एकाग्रता सिखाऊंगा। और टीचर्स कहते थे आजकल के बच्चे बड़े भाग दौड़ करते रहते हैं, हाइपर एक्टिव हैं, आप थोड़ा सा उनको एक जगह बिठाने में मदद करो। तो मैं बीच बीच में जाता था, और जब भी क्लास में जाता मैं ढूंढता था इसमें मम्मा कौन होगी, इसमें दादी कौन होगी। और धीरे धीरे मम्मा और दादी के साथ वो भावना जुड़ते जुड़ते कहीं ना कहीं बाबा ने ये मुझे एक संकल्प दिया कि आप इधर क्यों ढूंढ रहे हो, देहदारी पर क्यों मन लगा रहे हो, वो तो एडवांस पार्टी में जो भी सेवा करे आप मेरे साथ जोड़ो। और इसलिए मुझे जो सबसे अच्छा संबंध बाबा से लगता है, पिता शिक्षक सदगुरु के साथ एक संबंध बहुत अच्छा लगता है, और वो है शिव बालक। और इसलिए आज हमारे जब भरत भाई वो ना बहुत सुंदर श्री कृष्ण और राम को बता रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तालियां बजाइए हमारे भरत भाई के लिए। तो जिन्होंने वो थोड़ा सा सेशन मिस किया तो मैं कहता हूं फिर से आप वो वीडियो में देखिए, अपने साथ उस शिव बालक को भी देखिए और श्री कृष्ण को भी देखिए, कितना सुंदर वो है ना भावनाएं जो थी। तो मैं शिव बालक को भी के भी रूप में बाबा को याद करने लगा, और हर दिन मैं बाबा को लेटर भी लिखता था। तो एक दिन मैं स्कूल में गया, मैं बीच बीच में स्कूल में जाता था, तो एक बहन जी आए और उनके हाथ में छोटी सी बच्ची, और उस बच्ची को उसने मेरे हाथ में दे दिया और कहा स्वामी जी इस बच्ची को ठीक कर दो। तो मैंने उस बच्ची को देखा, बड़ा मुस्कुराता वो चेहरा, एकदम एंजेलिक फेस, चेहरे पर इतना तेज, जैसे एक छोटा इनोसेंट प्योरिटी। तो मैंने उस मामा को कहा मामा इस बच्ची को क्या हुआ, तो उसकी मामा ने कहा शी इज सफरिंग फ्रॉम सीपी, मेरे लिए सीपी इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मैंने कहा सीपी मतलब, बोला आपने सीपी नहीं सुना, मैंने कहा नहीं, बोला सीपी अर्थात सेरेब्रल पाल्सी, पहली बार मैं जीवन में सीपी सुन रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा इसमें क्या होता है, बोला ये बच्ची हिल नहीं सकती है। तो मैंने कहा डॉक्टर्स ने क्या कहा, तो उस मामा ने कहा डॉक्टर्स कुछ कहते तो मैं आपके पास क्यों आती थी। मैंने कहा आप मेरे पास क्यों आए, बोले मेरे बाजू में एक सखी रहती है, उसने मुझे बताया कि हफ्ते में एक दो दिन एक स्वामी जी स्कूल में आता है और सारे बच्चों को ठीक कर रहे हैं, स्वामी जी इस बच्ची को ठीक कर दो। मैंने कहा बहन जी मैं कोई स्वामी जी नहीं हूं, माय नेम इज स्वामीनाथन, बॉर्न इन तमिलनाडु। बोले नहीं स्वामी जी ऐसा मत बोलो, इस बच्ची को प्लीज ठीक कर दो। तो मैंने इस बच्ची को बहुत प्यार से देखा, फिर मैंने उसकी मम्मा को कहा मम्मा
मैं आपकी बच्ची के लिए प्रार्थना करूंगा, आई विल प्रे फॉर योर बेबी, ओके, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी करके उस बच्ची को माँ के गोदी में दे दिया। घर आया, मैंने गूगल में सर्च किया व्हाट सेरेब्रल पाल्सी, वीडियोस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। पूरा रात मुझे नींद नहीं आया। सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिमेंशिया, डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया। तब मुझे पता चला कि बाप रे, इतने सारे बच्चे इस तरह से जन्म ले रहे हैं। और दूसरा दिन मैंने अपने मेरे जो कुछ क्लासमेट जो डॉक्टर से, उनसे मैंने बात किया। मैंने कहा सेरेब्रल पाल्सी क्यों होता है? तो बोला स्वामी भाई, साइंस इज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, फिर मैंने अपने कुछ बीके डॉक्टर से पूछा जो बाबा के बच्चे, तो बड़े मुस्कुराते हुए कहते स्वामी भाई, आप तो बाबा के बच्चे हो, है ना, आदि मध्य अंत कार्मिक अकाउंट आप जानते ही हो। इट्स अ रियल आंसर। लेकिन मैं उस मम्मा से क्या बोलूंगा कि कार्मिक अकाउंट है। चलो भाई, अब जिसका कोई जवाब नहीं है तो हम क्या करें ना, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, साक्षी होकर रहना। मैं बस वो हाइपर एक्टिव बच्चों पर काम करता था। और देखिए उस दिन कैसे वो सैटेलाइट आप पर काम करता है और आपको किस तरह से लेके जाता है। बस आपकी एनर्जी करेक्ट होनी चाहिए। और मुझे अचानक डॉक्टर बनारसी भाई का फोन आया और भाई साहब ने कहा, स्वामी भाई इस बार मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है, आप आकर सेशन लेंगे। मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई मेडिकल विंग में चांस मिलना सेशन के लिए। और इसी हार्मनी हॉल में मैं ये सेशन ले रहा था और हमारे सामने बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे थे। तो मैंने कहा डॉक्टर्स को क्या ज्ञान सुनाना, तो हाइपर एक्टिव बच्चे मेडिटेशन के द्वारा कैसे ठीक होते वो मैं बता रहा था। और जैसे ही मैं नीचे उतरा तो एक डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, स्वामी भाई मैं भी न्यू बॉम्बे की हूं, आप बच्चों पर बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आप बहुत लेट कर रहे हो, आप छठी सातवीं बच्चों पर काम कर रहे हो, बहुत लेट काम कर रहे हो। मैंने कहा इसका मतलब? और एक डॉक्टर ने स्वामी भाई को सिविल इंजीनियरिंग सिखा दिया, मतलब कोई भी बिल्डिंग होती है उसका जो शक्ति डिपेंड करता है उसके फाउंडेशन पर, नींव पर। आपको बच्चों को तब मेडिटेशन करना चाहिए जब बच्चा मां के गर्भ में है। और जैसे ही उन्होंने ये बताया, पहला वो दरवाजा खुला। माय गॉड, दैट कुड बी अ रियलिटी। महाभारत में अभिमन्यु की कहानी बताते, चक्रव्यूह में चक्रव्यूह। मैं कहा राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन जब भी आप किसी यात्रा में जाते हो तो कुछ ऐसे बहुत विशेष आत्माएं मिलते हैं जो आपकी बहुत प्यार से परीक्षा भी लेते हैं। उन आत्माओं के प्रति बड़ी कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि वो आत्माएं बड़ी, जो भी आपका क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से स्वीकार करना, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा उनके द्वारा आपको कोई सिग्नल दे रहा है, तो आप सतर्क हो जाते हो, आपकी यात्रा ज्यादा सुरक्षित होती है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारी आत्माएं आपको मिलेंगे जो आपको बहुत प्यार से हैंड होल्डिंग करके चलते। मेरे को उस समय करीब 10-12 वर्ष ही हुए थे ज्ञान में। और ये जो टॉपिक है, मैं खुद भी कुमार हूं, ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से। हम तो योग बल से बच्चे जन्म देने की बात कर रहे हैं और यहां पे हम गर्भ संस्कार की बात कर रहे हैं। और उस पूरे जर्नी में जो सबसे ज्यादा हमको बहुत प्यार से सपोर्ट किए वो आदरणीय निर्वैर भाई साहब ने, बहुत प्यार से। और फिर मेडिकल विंग से हमारे मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड डॉक्टर अशोक मेहता जी। और यज्ञ में कुछ एक ऐसे विशेष आत्माएं जिनको मैं बहुत प्यार से आज भी याद करता हूं, उन बचपन के दिनों में जब हमको समझ में नहीं आ रहा था हम सही रास्ते पे चल रहे हैं नहीं चल रहे, हमें चलना चाहिए, श्रीमत है, मनमत है, परमत है, क्या है, क्योंकि नए थे ना ज्ञान में। और उस समय मुझे याद आता है आदरणीय सूरज भाई, राजू भाई, मधुबन की उषा दीदी जी और शिवानी बहन जी ने। आपको आश्चर्य हो गई जानकर कि सूरज भाई जी और शिवानी बहन ने उन एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स के लिए कमेंट्री बनाया, लेकिन बहुत गुप्त रीति से किया, राइट। और आपको आश्चर्य होगा इस बात का, देखो ड्रामा में क्या नूंद था कि अव्यक्त बाप दादा के सामने एक दिन बाबा जब मिल रहे थे तो बाबा ने पूछा, क्या नवीनता कर रहे हो? और डॉक्टर अशोक मेहता जी, क्योंकि दादी जी के पर्सनल डॉक्टर थे, सामने बैठे थे, माइक दे दिया। और उस समय हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा था, डॉक्टर अशोक मेहता जी बाबा की पधरामणी के समय पर सारा विश्व बाबा के बच्चे देख रहे हैं। और जब माइक दिया गया तो डॉक्टर अशोक मेहता जी कहते, बाबा अभी ये मेडिकल विंग गर्भ संस्कार पर काम करेगी। कैन यू इमेजिन? लेकिन बाद में निर्वैर भाई साहब ने कहा, जब जेल में जाकर
हमारे भाई बहने सेवा अगर कर सकते, कमेटी में यह बात उठी, जब जेल में सेवा कर सकते हैं तो बाबा तो गर्भ जेल की बात करते। अगर वो गायनाकोलॉजिस्ट उनको तनाव प्रबंधन बता रही है तो क्यों नहीं बताएगी, जरूर बता सकते वो। और उस समय बाबा का एक थर्ड डबल तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो निर्भय भाई साहब से जब हम मिल रहे थे, और खास करके इस प्रोजेक्ट के जो हेड है, मतलब जो टीम लीडर है मेडिकल विंग के तरफ से, हम भाई तो बस बैकग्राउंड के पीछे चल रहे, और वो है डॉक्टर शुभदा नील, MBBS MD गायनाकोलॉजी, नहीं बाबा की गायनाकोलॉजिस्ट बच्ची है। तो जब हम और डॉक्टर शुभदा बहन निर्भय भाई साहब से मिल रहे थे तो बोला अच्छा क्या लक्ष्य रखा है, तो शुभदा बहन कहती है डबल तीव्र पुरुषार्थी बनना। कैसे बनोगे? बोला एक साथ दो दो आत्माओं को हम ज्ञान सुनाएंगे, और अगर जुड़वे बच्चे हैं तो तीन तीन आत्माओं को एक साथ ज्ञान सुनाएंगे। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ समय के बाद फॉक्सी फेडरेशन ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उनके साथ मेडिकल विंग ने एक MOU साइन किया और उसका लॉन्चिंग हुआ। और एक साल पूरे भारत में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हर गायनाकोलॉजिस्ट एसोसिएशन में जाकर उसका स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया। और फिर हमारी टीम ने कहा स्वामी भाई विल डू द रिसर्च एंड PhD, और वो सब कंप्लीट हुआ। राइट, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर हम भी निश्चिंत हो गए। फिर हमने डॉक्टर शुभदा बहन को कहा आपका है ना काम है, आप आगे बढ़ाइए। और देखो लेकिन वो सैटेलाइट पकड़ता रहता, वो त्रिमूर्ति आपको देखती रहती है। और अचानक सेकेंड फेज पे, फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज पर गए, वो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन समय की एक मर्यादा है। सेकेंड फेज पर कैसे पहुंच, मैं वो स्टेप को देखता हूं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे बनता है। जैसे आपकी बिल्डिंग बनती है, पहले ये बनता फिर ये बनता ये बनता ये बनता, ऐसे ही आपकी भी यात्रा चलती है। और सेकेंड फेज जो हुआ दैट इज IVF एंड IUI, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब आप जाते हो ना तो बड़े बड़े आजकल होर्डिंग लगे रहते हैं, मां और बच्ची को दिखाते हैं। खुशखबरी यह है कि विकार से होने वाला जन्म अपने आप बंद हो रहा है, अपने आप बंद होगा, यह प्रकृति का नियम है। और सेकेंड फेज इज द IVF फेज। और यह सेकेंड फेज जब चालू हुआ तब मुझे याद आता, मैं और डॉक्टर शुभदा बहन फिर से डॉक्टर अशोक मेहता के घर गए और उनसे यह बताया। तो बोला स्वामी भाई पहली यात्रा तो फिर भी थोड़ा कठिन था, दूसरी यात्रा में तो वैसे ही वो विकर्म से वो विकार से तो दूर हो ही जाते ना, इसमें क्या है, आप अलग करिए। और फिर हमने राइट फॉक्सी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो IVF के स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड बॉडीज ISAR, इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन और इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी, उनके साथ MOU किया। और मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है, उस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन भी भोपाल में सिस्टर शिवानी बहन ने किया। और शिवानी बहन ने बड़े प्यार से सारे IVF एक्सपर्ट से कहा कि जब आप उसका फ्यूजन करते हो, टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं, उसका फ्यूजन जब करते हो तो आपका सफलता का रेट तब बढ़ेगा जब आपका वो फ्यूजन अमृत वेला जब आप करोगे। ऐसे दादी प्रकाशमणि जी ने जब शरीर छोड़ा उसके एक साल के बाद संदेश में, अगर आपको ध्यान होगा तो संदेश में था, दादी जी ऐसे अच्छे परिवार धनाढ्य परिवार में गए लेकिन वो युगल जो थे बच्चे की कल्पना भी नहीं कर रहे थे, और वो थोड़े बुजुर्ग युगल थे, वो कोई नई दंपत्ति नहीं थी। ये कहीं ना कहीं तब जब IVF में गए तो दादी जी का वो संदेश ध्यान आया, और फिर लगा बाबा यस हमको रास्ता बता रहा है। और जैसे IVF के लिए गए थे तो डॉक्टर अशोक मेहता ने मुस्कुराते पूछा Phase 3 भी होगा क्या? तो मैं तो बस मुस्कुराने लगा, बोला नहीं बताओ स्वामी भाई। मैं कहा भाई साहब थर्ड फेज तो योग बल से जन्म लेने वाली बात होगी ना। बोला उसके लिए कब परमिशन के लिए आओगे? मैं कहा जब बाबा बताएगा, जब समय आएगा तब होगा। और देखिए क्या वंडरफुल सीन था, जब कोविड आया, कोविड के बाद जब कोविड ठीक हुआ, जब कोविड आया तो हमको लगा ये विनाश की घंटियां बजने लगी, और सचमुच कोविड से विनाश की घंटियां चालू हो गई जब हमारी दादियां भी एडवांस पार्टी में जब चली गई, और उसके बाद रशिया यूक्रेन जो भी युद्ध चल रहा है। तो जब कोविड ठीक हुआ तो मैं एक प्रोग्राम के लिए गया था, तो जब मैं प्रोग्राम के लिए गया तो जब प्रोग्राम खत्म होकर निकल रहा था तो वहां की टीचर बहन बोला स्वामी भाई बस 5 मिनट में और आपका चाहती हूं। मैं थोड़ा जल्दी में था, मैंने कहा बताइए क्या सेवा है? बोला हमारे एक यंग कपल है, युगल है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मिले वो युगल मेरे सामने, तो मैंने बताइए क्या मदद चाहिए? बोला अभी हमारी थोड़े समय पहले शादी हुई, बीच बीच में हम यहां पर आते, एक बार माउंट आबू भी गए थे, बीच बीच में हम ये प्रोग्राम होता तो माते। मैंने कहा ठीक है हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं वो बताइए ना, मेरे पास वक्त कम है। तो बोला भाई साहब
एक्चुअली क्या है कि हम लोग की जब शादी हुई तो नेचुरली पेरेंट्स और इन लॉज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे देने चाहिए, पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए, है ना, कुल दीपक होना चाहिए, ऐसे सब बताते हैं। तो जैसे ही कोविड आया तो हमने कहा नहीं भाई, ये सब अंत समय हो रहा है और ब्रह्मा कुमारी बीच बीच में विनाश विनाश करती रहती है, बात बराबर है। लेकिन जब कोविड ठीक हुआ तो फिर से उनके प्रेशर आने लगे। तो ये सब मैं कहानी सुन रहा था, मैंने कहा अच्छा अब बताइए हमें क्या हेल्प चाहिए आपको, बताइए। तो बोला हमारी यहाँ की टीचर बहन कहती है कि आप लोग कुछ डिवाइन गर्भ संस्कार पर प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो मैं और हमारे जो युगल हैं संपूर्ण पवित्र ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हैं, भाई साहब आप हमें बताइए योग बल से बच्चे कैसे जन्म देते। मैंने कहा क्या क्या क्या, बोला योग बल से बच्चे जन्म। तो मैंने वो तीन सैटेलाइट के ऊपर देखा, मैंने कहा आप इनको यूज कर रहे हैं, फिर मेरे को संदेश दे रहे, मुझे क्या पता। तो मैंने उनको मुस्कुराते हुए बोला मैं ना सोच कर बताऊंगा, अब कैसे बोलूं आउट ऑफ सिलेबस से। राइट। और जैसे पहले फेस में नींद नहीं आई ना, वैसे ही मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। और कहीं ना कहीं बाबा का ये संदेश था कि अब टाइम आ रहा है। बहुत जगह मुझे सेवाओं पर बुलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं बता दूं सबसे बेस्ट सेवा, सब बहुत अच्छी सेवा है। एक जगह हम गए थे तो वहां टीचर बहन बड़ी इंटरेस्टिंग, क्या सेवा का एनर्जी, क्या क्रिएटिविटी है। बोला स्वामी भाई पता है शाम को आपका सेशन है। मैंने कहा कौन सा सेशन है बताइए, कौन है ऑडियंस, क्या है टॉपिक। तो कहती है स्वामी भाई जैसे कोई बीके परिवार होता है ना, तो पहले तो आपको संकल्प करना चाहिए कि आपके बच्चे 100% बाबा के बच्चे रहे। लेकिन बाबा मुरली में कहता है अगर कोई बच्चों का, आपके बच्चों का पार्ट अगर अलग हो तो उनको आप बिठा के नहीं रखे, उनको शादी करवा दीजिए, ये भी बाबा के महावाक्य है। तो ये टीचर बहन कहती है एक साल में जितने भी बीके परिवार के बच्चों की जो शादी हुई है और जिन्होंने इनविटेशन कार्ड लाकर हमको देते थे, हम क्या कहते बाबा के कमरे में रख दीजिएगा। बोला एक साल में जितने भी इनविटेशन कार्ड बाबा के कमरे में आए वो सारे युगलों को मैंने आज शाम को बुलाया है। मैंने कहा टॉपिक क्या है, बोला योग बल से बच्चे कैसे जन्म देंगे, उस पर आप सेशन लेंगे। और मैं वो सुनकर ना फिर से ऊपर की ओर देखा, मैं कहा क्या भाई क्या, मुझे पता नहीं है कैसे होते। राइट, हाउ डू आई डू इट भाई, मुझे नहीं मालूम है। और बाबा ने मुरली में बहुत क्लियर कट कहा बच्चे जब टाइम आएगा तो आपको बताएंगे। तो चलो टाइम आया या नहीं आया कैसे पता चलता है, मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाता हूं। कैन आई गेट द स्लाइड, तपस्या भट्टी रिटर्न जर्नी, योग बल से जन्म। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमारी जो सारी किताबें लिखी आदरणीय जगदीश भाई जी ने लिखा है। तो जगदीश भाई जी जाने के पहले एक लास्ट किताब लिखी है, वो लास्ट किताब है स्पिरिचुअल मिसलेनी। वो किताब मैं यहां पे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद भी कर रहे थे लेकिन हिंदी अनुवाद हुआ नहीं हुआ मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश किताब आज भी शांतिवन में, शायद यहां के लिटरेचर में भी है। जाने के पहले अंतिम किताब, स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म, मिसलेनियस का मतलब होता है जो सामान छूट गया उसको जब इकट्ठा करते हैं तो उसको मिसलेनियस कहते हैं। राइट। बाबा की पधरावणी 1936-37 में हुई, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 1969 में, जगदीश भाई जी ने शरीर छोड़ा 2001 के आसपास। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी जगदीश भाई जी अपने किताब में लिखते, जो नेक्स्ट लाइन में मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर विश्व के 5 डॉक्टर्स की कमिटी बैठी और कमिटी ने एक लक्ष्य रखा जिसको रिसर्च में हाइपोथेसिस कहते हैं, थ्योरी। और लक्ष्य यह था कि जिस दिन संकल्प शक्ति से बच्चे जन्म लेने लगेंगे उस दिन संस्कार का रोग खत्म हो जाएगा। यह थ्योरी था, हाइपोथेसिस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्विजी में पूछ लेता हूं आपके लिए, मुकुल भाई अगर बैठे हैं तो गिफ्ट की भी तैयारी करें। मैं आपसे पूछता हूं 1936-37, 1969, 2001, नेचुरली उन्होंने किताब लिखा 2001 के पहले कमिटी बैठी होगी, कौन से साल में कमिटी बैठी थी ये संकल्प को लेकर, आप गेस कर सकते हैं, अंदाज कर सकते हैं। तीन पड़ाव में आपको दे रहा हूं, 1936, 1969, 2001, और वो कमिटी बैठी, मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि आपको पांडव भवन भी जाना है, इट इज द ईयर 1955, 1955 में। और 2026 में अभी भी हम बैठ के सोच रहे हैं जब समय आएगा तब बाबा बताएंगे। देखिएगा स्लाइड, इस पूरी किताब में लास्ट 4 चैप्टर्स जगदीश भाई जी ने
योग बल के बारे में लिखा है. इमैकुलेट कंसेप्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ अ मेल, राइट. ये पांच डॉक्टर्स का नाम आप देख सकते हो, राइट. और एक्सेप्ट फ्रॉम मेडिकल रिपोर्ट. खुशी की बात है, सन 2014 में, 2014 में ये ब्रिटिश जर्नल में पब्लिश हो गया, बीएमजे, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल. मैं आपको जर्नल दिखा रहा हूं. और अगर आप में से कोई कहेगा कि नहीं, वो तो श्री कृष्ण का पहला जन्म होगा, फिर सत्युग आएगा तब जन्म होगा, ब्रिटिश मेडिकल ये जर्नल ये कहता है. लेकिन बीएमजे को हम क्यों विश्वास करें? हम तो बाबा के बच्चे ना, हम बाबा के महावाक्य को समझेंगे. लेकिन बीएमजे में दिखाया गया जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें देर आर 100% फीमेल क्रोमोसोम्स, नो मेल क्रोमोसोम्स एट ऑल, मतलब वर्जिन बर्थ. अब मैं आपको बाबा के महावाक्य दिखाता हूं. डिवाइन गर्भ संस्कार, योग बल से जन्म, और रेफरेंसेस फ्रॉम साकार मुरली. और मैं पिछले एक दो महीने का साकार मुरली आपके सामने रख रहा हूं ताकि वो आपको ध्यान में रहे. और बाबा के प्रति, बाबा के मुरली के प्रति हम सब बाबा के बच्चों का 100% निश्चय है, नो क्वेश्चन आस्क्ड. साकार मुरली 5 फरवरी 2026. बहुत ध्यान से सुना, श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं. थोड़े भी हो सकते, बहुत भी हो सकते, थोड़े बहुत. अब कितनी संख्या है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. जब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते, तो ट्रांजिशन अभी चलेगा. अपना राज्य ले लेते हैं तब से ही उनका संवत शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है. साकार मुरली 23 फरवरी 2026. बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, वहां गर्भ महल कहा जाता है, यहां है गर्भ जेल. 6 अप्रैल 2026 बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है. फिर आगे आप देखना, 30 अप्रैल 2026 कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे जन्म लेंगे, बाहुबल नहीं योग बल, बाबा कहते हैं. ना दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, 11 मई 2026, पिछले महीने की साकार मुरली है. श्री कृष्ण सत्यु का प्रिंस था, श्री कृष्ण के मां बाप भी अभी पढ़ रहे हैं. अब क्या पढ़ रहे हैं मुझसे नहीं पूछे, इट्स आउट ऑफ सिलेबस फॉर मी. लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि सारे सिग्नल मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि शायद स्वामी भाई से ज्यादा कंपिटेंट शायद आप होंगे. तो 3 सैटेलाइट जैसे आपको कहेगी आपको टचिंग मिलेगा, और कैसे सेवा करना है आप कर सकते हो, हमें बता सकते हो. मां बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है, मां बाप का कोई नाम नहीं है. नहीं तो जिस मां बाप से ऐसे बच्चे पैदा हुए वो मां बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा सारे राधा कृष्ण की है. मां बाप की कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है. अव्यक्त मुरली 2 फरवरी 1977, सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाले ही स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं. नई दुनिया बनाने वालों को अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है, क्या नवीनता हम कर रहे हैं? नहीं तो वही चीज जो 90 वर्ष से चल रहा है. ज्ञान में नवीनता, योग में नवीनता, धारणा में नवीनता, सेवा में नवीनता, इस पर फोकस होना चाहिए हमारा. पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे तब दुनिया में भी नवीनता आएगी. जो जितना अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा. लास्ट में विथ योर परमिशन, क्योंकि 5:30 हो रहे हैं, 5-6 मिनट लेकर मैं अंत करूंगा, जो भी यहां पे बहने हैं, राइट. एक बार मैं ऐसे ही प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने सारे बीकेएस का था सेशन, भट्टी करा रहा था, तो मैंने पूछा आप में से कौन कौन है ना श्री कृष्ण के नजदीक जन्म लेंगे, है ना विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे, तो सबने हाथ उठाया. उसमें एक बहन बड़ी बुद्धिमान थी, वो खड़े होकर कहती है स्वामी भाई हम इतना बाबा को याद करेंगे कि हम जरूर विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे. फिर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहते स्वामी भाई लेकिन हमने आपके लिए एक पद सोचकर रखा है सत्युग में, तो आपको ऐतराज ना हो उस पद को स्वीकार कर सकते हो. मैं कहा बहन जी बताइए स्वामी भाई के लिए आपने क्या पद सोच के रखा है. तो बहन जी कहती है स्वामी भाई जब हम सत्युग में विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे ना तो हमारे राजकुमार और राजकुमारी भी होंगे, उनके लिए एक अच्छा ट्यूशन टीचर को हम ढूंढ रहे थे. आपको ऐतराज ना, उनको थोड़ा ट्यूशन व्यूशन ले सकते हो. वाह, हमने कहा होंगे कामयाब, राइट, जरूर. फिर प्रश्न उठता है कि क्या श्री कृष्ण पढ़ने जाएगा क्या? तो यहां पे लिखा हुआ है श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? ये बाबा के अव्यक्त महावाणी 1977। पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी तो होंगे ना। यस, तो फाइनल में वाइंड अप करता हूं। दो पुरुषार्थ करना है। पहला पुरुषार्थ, बहुत शांति, प्यार, इतनी प्योर एनर्जी, किसी के प्रति, हर आत्मा के प्रति अच्छी भावना, जो हैं जैसे हैं बाबा के, बहुत मीठे प्यारे बच्चे, स्वीकार करें उसको, राइट। और नंबर टू, जहां पर भी आपकी दृष्टि पड़ती है, ये भट्टी खत्म होगा ना, प्लीज आप वो त्रिमूर्ति सैटेलाइट को सहयोग दीजिएगा। जैसे हम जाते रेलवे स्टेशन में, यहां पर वहां पर आप देखते हैं ना, लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, कभी भी संकल्प नहीं चलना चाहिए कि ये कैसे बच्चे, बिल्कुल संस्कार नहीं है। नो, हम बाबा के बच्चे आधारमूत उद्धारमूत, जैसे हमारी नजर उन पर पड़े, भले वो नजदीक बैठे हैं, उनका व्यवहार इतना कोई शुद्ध नहीं है, लेकिन हमारी नजर पड़नी चाहिए बाबा को याद करते हुए, वो है ना, वो टनल उनके ऊपर देकर कि शायद ये युगल शायद योग बल के लिए निमित्त बन सकते। कभी भी हमारे तरफ से इनके संस्कार ठीक नहीं है, कैसा व्यवहार कर रहे, नहीं, कभी नहीं। और नंबर टू, क्योंकि आप में से बहुत सारे घर गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले को आपको बहुत सारे आजू बाजू शादियों में बुलाया जाता है, बाबा ने परमिशन दी है, बहुत सुंदर श्रृंगार होकर जाइए, पाउडर नहीं लगाना, बीच में बाबा बोल रहे थे पाउडर वाउडर मत लगा, है ना, बाबा की अभी अभी की मुरली आई थी, एकदम सुंदर होकर श्रृंगार करके आप जाइएगा। आप जब उस स्टेज पर जाते हो, वो यंग कपल को गिफ्ट देते हो, इतनी अच्छी तरह से बाबा को याद करिएगा। और जब आप गिफ्ट देते तो ऐसी दृष्टि दीजिए बाबा को याद करते हुए, ये युगल शायद निमित्त बन सकते। एंड जस्ट वेट फॉर द ड्रामा टू अनफोल्ड, आगे की यात्रा कैसी होगी। और खुशी की बात है कि ऑलरेडी हम थर्ड फेज पर पहुंच चुके, थर्ड फेज की यात्रा भी चालू हो चुकी है। बस आपको एक नया कनेक्शन अगर बाबा से मिल जाता है, वो सिग्नल मिल जाता है, तो या तो आप सूरज भाई को बताइए, राजू भाई को बताइए, हमारी उषा दीदी जी को बताइए, शिवानी बहन को बताइए, स्वामी भाई को बताइए, डॉक्टर शुभदा बहन को बताइए, क्योंकि आपका भी तो हॉटलाइन कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। हर एक के प्रति बहुत पॉजिटिव। और लास्ट, जब उस बहन ने कहा सतयुग में आप हमारे राजकुमार राजकुमारियों को पढ़ाएंगे, तो मैं सोच रहा था क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, राइट। तो मैं यही सोच रहा था जब मैं ये मुरली उन्होंने भेजा मुझे, तो मुझे लगा था कि अगर मैं, वो संकल्प करते हैं कि मैं शिक्षक बनूं, तो उसके लिए कुछ तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा ना, और इसलिए हमेशा श्री कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं। तो आज मैं साकार मुरली तो नहीं लेकर आया हूं, लेकिन एक स्थूल मुरली लेकर आया हूं। और जब से वो बहन जी ने मुझे वो भेजा, तब से मैं एक अभ्यास कर रहा हूं ये मुरली का। तालियां बजाइए इस मुरली के लिए। और अभी का लेटेस्ट जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, एक तरफ तो वो प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन खास मैं अपने हमजींस को देखता हूं, कुमारों को देखता हूं, और दुनिया का तो डिजिटल एडिक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही, लेकिन कभी कभी हमारे मीठे प्यारे कुमार लोग भी मोबाइल को लेकर एकदम फंस जाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स पर ब्रह्मा कुमारी बहुत क्लास कराते, कराने भी चाहिए, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक नशे को छोड़ने के लिए दूसरा नशा चढ़ना चाहिए। हाथ से मोबाइल अगर उठा निकालना है तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ देना चाहिए। फिर मुझे लगा, मुझे एक आइडिया बाबा ने दिया, बार बार मैं बाबा से पूछता था, बाबा क्या करूं, है ना, सत्युग में कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगी। बाबा ने तो बताया डांस होगा, म्यूजिक होगा, पेंटिंग होगा। फिर बाबा ने, लेकिन फिर मैं बाबा से पूछा, डिजिटल डिटॉक्स हमारे कुमारों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए क्या करना है। तो अचानक मॉर्निंग वॉक करते करते बाबा ने कहा, आप पहले फ्लूट सीखो, आप बांसुरी सीखो। और मैं कुछ समय से, बहुत कम समय से मैं बांसुरी सीख रहा हूं। तो कौन कौन स्वामी भाई की इस मुरली को सुनना चाहेंगे, अच्छे वाइब्रेशन देना है। और हमेशा श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी इसलिए देते हैं क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स में सिर्फ बांसुरी एक इंस्ट्रूमेंट है, द फ्लूट, जो श्री कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं, और बाकी तबला हो, हारमोनियम हो, गिटार हो, सितार हो, उसको ट्यून करना पड़ता है। लेकिन एक फ्लूट सिर्फ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप बाहर से इसको ट्यून नहीं कर सकते, आपको स्वयं को ट्यून करना पड़ेगा। और मैं इसके लिए, मैं विधि पूर्वक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के लिए मैं एक ऑफर देता हूं, है ना, दिव्या बहन जी के परमिशन से मैं आपको ऑफर देता हूं, क्योंकि आप सभी भी होवना राजकुमार राजकुमारियां हो ना, राइट। तो आप में से कौन कौन ये फ्लूट सीखना चाहता है,
राइट, अरे वाह, तो हम जूम पर आपको लेंगे और हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे, और आपके सेंटर्स के नजदीक जितने भी कुमार हैं उनको भी आप जोड़ना। तो आने वाले समय पर मेमोरी वेमोरी मैं आजकल कराते ही नहीं हूं, वो बचपन की मेमोरी है, अभी तो नई दुनिया के लिए। और जब मैं कुमारों को बैठकर ये सिखाता हूं तो मुझे वही दृश्य, कुमारों को भी यही दृश्य देना बार बार, बच्चे आप नई दुनिया में श्री कृष्ण के नजदीक आप गोप गोपिका बनने वाले हो। तो बस मैं 2-3 मिनट आपको मैं ये फ्लूट बजाता हूं, राइट, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग, मैं भी इस यात्रा में हूं। अगले 1-2 साल में आप आएंगे ना, आप देखेंगे और कहेंगे स्वामी भाई जब पहली बार आप ज्ञान सरोवर बोले ना उससे अभी बहुत अच्छा आप सुना रहे हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते, ये भी एक बहुत सुंदर। तो दिस इज राग भूपाली और यही टाइम होता है ना, दिन का तीसरा पहर पर राग भूपाली गाते हैं, राइट, हमारे हरीश मोहिल भाई और नितिन भाई तो बहुत अच्छा गीत गाते हैं, सारे गा पा धा ना सा, राइट। फिर से मैं ये राग गाऊंगा, लेकिन जब आप ये कर रहे हो ना मन बुद्धि को 1 सेकेंड में वो GPS सेट करना, यही हमारा योग है। धीरे से आत्मा जा रही है शिव बाबा से, धीरे से गर्भ महल में और गर्भ महल से राज्य महल में, और फिर आप देखना आप गुरुकुल में बैठे हैं और कोई ना कोई विशेष टीचर आपको ये सिखा रहा है, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप है, मैं बेसिक ये अलंकार आपको बता रहा हूं, लेकिन क्योंकि टाइम की एक लिमिटेशन है, बाबा भी और मधुबन पांडव भवन आपका इंतजार कर रहा है, बस भी इंतजार कर रहा है, तो मैं बस 2 मिनट और आपका लूंगा। मैं आपको एक ट्यून बजा के बताता हूं और आपको पता लगाना ये ट्यून कौन सा है, ठीक है। आई जस्ट प्ले द ट्यून फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, और देखते हैं आप में से कौन है वो उस ट्यून को पकड़ सकते हैं। ये कोई फिल्मी ट्यून नहीं है, ये ट्यून उस समय भी चलता है और अभी भी चलता है, तो आप बताना ये ट्यून कौन सा है। बार वहां पे भी बजता है, कौन सा ट्यून है ये, कौन सा ट्यून है ये, हाँ कुछ लोग के ओंट से मुझे समझ में आ रहा है, ये है 5:55 का सुबह सुबह का आकाशवाणी का ट्यून, सानी सानी धामा नी धामा ग मा धामा ग, राइट, ये जो ट्यून है। अब लास्ट एक गीत, एक फिल्मी गीत है,
आप उस फिल्मी गीत पकड़ने की कोशिश करना,
ठीक है। अगली बार आऊंगा तो मैं पूरा गीत बजाने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करता हूं। पहली बार मैं ऐसे एक पब्लिक प्रोग्राम में कैमरा के सामने मैं ये फ्लूट बजा रहा हूं, तो थोड़ा मेरा BP और प्राणायाम भी हो रहा है, तो थोड़ा ये वही दिन होते जब पहली बार स्टेज में खड़े होकर आप सेशन लेते हो, लेकिन आजकल, हाँ जी, अच्छा फिर स्वामी लग रहे, लेकिन कुछ समय के बाद अभ्यास करते करते कितना इजी हो जाता है। तो एक गीत है, फिल्मी गीत है, आप ये गीत पकड़ना। कौन सा गीत है, वाह,
इसका एक्चुअल से शायद मैं 10% पहुंचा होऊंगा, लेकिन आपने पकड़ लिया, मतलब आपका वो 3 सैटेलाइट के साथ कनेक्शन परफेक्ट है। चलते सभी गुनगुनाइए, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि भाई हम गीत नहीं गा सकते, तो मेरे सामने रोल मॉडल गीत के पता कौन है? हरीश भाई और सजय, हमारे नितिन भाई तो हैं, लेकिन मेरे रोल मॉडल पता है गीत के मामले में रमेश भाई जी और ब्रजमोहन भाई हैं। वो अगर बाबा के सामने गीत गा सकते हैं और इतनी मीठी गीत गा सकते, तो आप और क्यों नहीं गा सकते ना। ये बहुत अच्छा गीत है, बड़े फिल्मी गीत है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बाबा हम बच्चों के लिए गा रहे। रोते हंसते करिए, रोते हंसते फिर भी तुम गुनगुनाते रहना। गुनगुनाइए, रमेश भाई जी और ब्रजमोहन भाई कितने खुश होते होंगे एडवांस पार्टी, राइट। और लास्ट में बहुत अच्छा एक ये है, बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, सत्युगत त्रेता युग बाबा रहते फिर हम, है ना, अभी संगम युग खत्म होते ही साथ हम बिछड़ जाते। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। द्वापर युग आए तो हम भटकने लगते, आगे कौन सा लाइन है गाइए जरा, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ओम शांति।